Iran Radio Podcast.
सोलहवीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर सबसे पहले पहुंचने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। कैथोलिकों के नेता पोप ने ऐलान किया था कि जो भी इस जंग में शिरकत करेगा उसके सभी पाप माफ कर दिए जाएंगे। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 51वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। पुर्तगालियों को सोना और गुलाम चाहिए थे और वो तेजी से अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए कालों के कान और हाथ काट दिया करते थे ताकि उनके पास जो सोना है उसे छीन लें। जल्द ही उनके ये बात समझ में आ गई कि कालों को पकड़कर बाजार में बेचना अफ्रीकी सोने से भी ज़्यादा लाभदायक सौदा है। हालांकि बहुत से अफ्रीकी ये समझते थे कि पुर्तगाली यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करने पहुँचे हैं। ऐसे ही भोले भाले लोगों में से एक कांगो का शासक था जिसने पुर्तगाल के राजा को पत्र लिखा, हम आपसे चर्च में सेवाएं आयोजित करने के लिए एक पुजारी और शराब और आटे के अलावा कुछ नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि कांगो में दास व्यापार या कोई दास बाजार न हो। इस अफ्रीकी शासक को पुर्तगालियों ने जवाब दिया कि कांगो पहुँचने के बाद एक सदी के दौरान वे 5 लाख गुलाम यूरोपीय देशों में ले गए और उनके पड़ोसी देश यानी अंगोला से 10 लाख लोगों को गुलाम बनाया गया। पुर्तगालियों के बाद स्पेनिशों ने दास व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। कई साल से उनका अमरीकी महाद्वीप पर कब्जा था और वहां गन्ने की खेती के लिए उन्हें बधुआ मजदूरों की ज़रूरत थी। स्पेनिश राजा अफ्रीका में कालों को पकड़ कर अमेरिका में बेचने के लिए लाइसेंस जारी करते थे, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। अंग्रेज़ों ने अभी इस वादी में कदम नहीं रखा था। आखिरकार अफ्रीका के कुछ शक्तिशाली और बड़े कबीले इस नतीजे पर पहुँचे कि ईसाई धर्म का प्रचार सिर्फ एक बहाना है, इसीलिए उन्होंने कालों को ग़ुलाम बनाए जाने के खिलाफ पूरी ताकत से संघर्ष शुरू कर दिया। ग़ुलामी के खिलाफ संघर्ष करने वालों में प्रमुख नाम दाहोमी इलाके के शासक अगाजा त्रुदो का था। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित इस इलाकों को वर्तमान में बेनिन देश के रूप में जाना जाता है। अगाजा त्रुदो ये देखकर बहुत नाराज था कि यूरोपीय उसके हम वतनों का शिकार करते हैं और उन्हें गुलाम के रूप में बेच देते हैं। त्रुदो ने इसे रोकने के लिए अपने शासन का समुद्री तट तक विस्तार करने का प्रयास किया ताकि उन जहाज़ों पर नियंत्रण कर सके जो वहाँ गुलामों को ले जाने के लिए लंगर डालते हैं। उसने इलाके में यूरोपियों द्वारा बनाए गए किले को नष्ट कर दिया और यूरोपियों को वहां से खदेड़ दिया। कुछ समय तक दाहोमी में दास व्यापार थम गया। यूरोपीय व्यापारियों ने त्रुदो के शासन को गिराने का प्रयास किया लेकिन वो कामयाब न हो सके। यूरोपीय जब त्रुदो के शासन के पतन में सफल नहीं हो सके तो उन्होंने उसके देश के लोगों को यूरोपीय वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया। वहाँ के लोगों को यूरोप में बनने वाली चीज़ों के इस्तेमाल की आदत पड़ गई। अब त्रुदो के शासन को इन उत्पादों के आयात के लिए धन की ज़रूरत थी, उसे बंदूकों की भी ज़रूरत थी क्योंकि यूरोपियों ने उन कबीलों को यह हथियार दे दिया था जो निरंतर त्रुदो के इलाके पर हमला करते रहते थे। आखिरकार त्रुदो को झुकना पड़ा और हथियारों और यूरोपीय उत्पादों के बदले में दास व्यापार की अनुमति देनी पड़ी। अमरीकी खेतों में काम करने के बदले गुलामों की कीमत काफ़ी कम थी। 1751 में गुलामों को ढोने वाले एक जहाज़ के मालिक जॉन न्यूटन ने एक अमरीकी किसान से सुना कि गुलामों से उनकी मौत तक काम लेना और फिर नए गुलाम खरीद लेना ज़्यादा लाभदायक है। उसका कहना था कि कम आराम, कम भोजन और सख्त काम एक गुलाम से ज़्यादा लाभ उठाने का फार्मूला है। जब गुलाम मर जाए तो उसकी जगह नया गुलाम खरीद लिया जाए। करीब 400 साल तक मानव व्यापार चलता रहा। उसके बाद यूरोपियंस को पता चला कि अफ्रीका खनिजों से समृद्ध इलाका है जिन्हें निकालकर बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए कालों की अब वही ज़रूरत थी ताकि उनसे खनिजों को निकालने का काम लिया जाए। इसीलिए उसके बाद दास व्यापार पर दुनिया भर में प्रतिबंध लगा दिया गया। यूरोपियन समझ गए थे कि कर्ज देकर दूसरे देशों पर आसानी से वर्चस्व जमाया जा सकता है। वे इन देशों को कर्जा देते थे जिनकी किस्तें चुकाना उनके लिए बहुत कठिन होता था। उसके बाद कर्ज की अदायगी न होने के बहाने वो इन देशों के सबसे महत्वपूर्ण खनिजों पर कब्जा कर लिया करते थे। 1881 में फ्रांस ने ट्यूनीशिया के साथ यही गेम किया था। उसने ट्यूनीशिया को कर्ज दिया और जब ये देश किस्तें नहीं चुका पाया तो फ्रांस ने इसे बहाना बनाकर सरकार को अपने नियंत्रण में ले लिया और टैक्स में इजाफा कर दिया। लोग भारी करों के नीचे दब चुके थे, इसलिए उनके पास संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फ्रांस ने ट्यूनीशियाई लोगों के इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने सैनिक रवाना कर दिए और इस देश पर कब्जा कर लिया। 19वीं शताब्दी में उत्तरी अफ्रीकी देशों पर यूरोप का कब्जा था, लेकिन इन देशों और मध्य अफ्रीका के बीच ग्रेट सहारा रेगिस्तान स्थित था। यूरोपीय लोगों ने तब तक इस बड़े रेगिस्तान को पार नहीं किया था। मध्य अफ्रीका अभी भी उनके लिए अज्ञात था, लेकिन अगर उन्हें उन क्षेत्रों की समृद्धि के बारे में जानकारी होती तो वे तुरंत उन पर भी कब्जा कर लेते। डेविड लिविंगस्टन और हेनरी मार्टिन स्टेनली जैसे लोगों ने यूरोपीय लोगों को इन इलाकों से परिचित कराया। हेनरी स्टेनली एक पत्रकार थे जो अमेरिका में न्यूयॉर्क हेराल्ड के लिए काम करते थे। उन्होंने अफ्रीका से बड़े रोमांचक समाचार और रोमांचक घटनाओं की स्टोरी अखबार को भेजी। लेकिन कुछ साल बाद उन्हें नई नौकरी मिल गई। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने 1879 में अफ्रीका के मध्य में कांगो नामक क्षेत्र खरीदने के लिए स्टेनली को नियुक्त किया। स्टेनली कांगो गए और वहाँ व्यापार करना शुरू कर दिया। वो कबीलों के सरदारों को टोपी, चमकीले कोट, टिश्यू पेपर और शराब की बोतलें जैसे उपहार देते थे और उनसे कागजात पर अंगूठा लगाने या हस्ताक्षर करने को कहते थे। ये उस अनुबंध के कागजात थे जिसके तहत कबीलों के सरदार अपने आसपास के इलाकों और जंगलों को स्टेनली को बेच रहे थे। स्टेनली द्वारा इन ज़मीनों की खरीदारी अफ्रीकियों के लिए अजीब और हास्यास्पद थी, क्योंकि वे ज़मीनों और जंगलों का सामूहिक और निजी तौर पर इस्तेमाल करते थे और निजी स्वामित्व का उनके लिए कोई विशेष अर्थ नहीं था। स्टेनली ने 700 से ज़्यादा कबीलों के प्रमुखों के साथ संधि की और बेल्जियम के राजा को उनके देश के आकार से 7 गुना बड़ी भूमि का मालिक बना दिया। स्टेनली एकमात्र ऐसा शख्स नहीं था जिसने अजीब अनुबंधों से अफ्रीकी लोगों की ज़मीनें हड़पी थी। काउंट डी ब्राजा ने फ्रांसीसियों के लिए उत्तरी कांगो में ऐसा ही किया था और डॉक्टर कार्ल पीटर ने पूर्वी अफ्रीका में जर्मनी के लिए भूमि अधिग्रहित की थी, लेकिन कोई भी स्टेनली जितना सफल नहीं हुआ। सभी यूरोपीय देश इस कहावत पर विश्वास करते थे कि सभी के लिए अफ्रीका में पर्याप्त जगह है। वे 15 नवंबर 1884 को जर्मन चांसलर बिस्मार्क के निमंत्रण पर अफ्रीकी केक को आपस में बांटने के लिए बर्लिन में जमा हुए। वार्ता और सौदेबाजी में कई महीने लग गए, लेकिन क्योंकि जलमार्गों पर नियंत्रण उन सभी के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए जल्द ही नाइजर नदी और कांगो नदी जैसी प्रमुख नदियों पर नौवहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर सहमत हो गए। फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका में बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड ने के जिसने पहले ही दक्षिण अफ्रीका पर कब्जा कर लिया था, काहिरा से दक्षिण अफ्रीका तक एक मार्ग बनाना अपना अधिकार समझा। कांगो की विशाल भूमि बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय के नियंत्रण में आ गई, जिन्होंने इसे हेनरी स्टेनली के माध्यम से खरीदा था। जर्मनी ने नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया। यूरोप से अफ्रीका जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने, चाहे वे किसी भी देश से हों, एक जुमला जरूर दोहराया, हम श्रेष्ठ जाति हैं। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अफ्रीका गए सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था, हम अफ्रीकियों के बीच एक श्रेष्ठ जाति के सदस्य के रूप में जाते हैं। हम सरकारी एजेंट हैं जो मानव परिवार के इन दुर्भाग्यपूर्ण सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। इनमें से एक अन्य ईसाई मिशनरी ने कहा था, मेरी राय में हम दुनिया की सबसे अच्छी जाति हैं, हम जितना ज़्यादा विश्व के विभिन्न भागों में रहेंगे मानवता के लिए उतना ही बेहतर होगा। अगर ईश्वर है तो उसकी रुचि अफ्रीका के मानचित्र पर लाल बिंदुओं अर्थात इंग्लैंड से संबंधित क्षेत्रों को बढ़ाने में है। इस तरह के बयान एक और अफ्रीकियों को और अधिक अपमानित करने और उन्हें यूरोपीय प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध करने से रोकने के लिए दिए गए, तो दूसरी ओर इन्हें यूरोपीय लोगों के कानों में डाला गया ताकि उनकी नस्लें अफ्रीका में किए जा रहे नरसंहारों पर शोक न मनाएं। इस तरह की बयानबाजी से यूरोपियन बर्लिन में आपस में बांटी गई भूमि पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये शब्द सिर्फ अफ्रीका पर कब्जा करने की तैयारी करने वाले अधिकारियों के मुंह से नहीं निकल रहे थे, बल्कि कभी कभी यूरोपीय विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी गोरों के विशेष महत्व की बात करते थे। ब्रिटिश वैज्ञानिक एसोसिएशन के सदस्य प्रोफेसर W.R. शेफर्ड ने कहा था, मुझे नहीं पता कि जिन लोगों के खेतों और खदानों पर हमने कब्जा कर लिया है वे खुश हैं या नहीं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जब बात व्यवसाय की आती है तो इन क्षेत्रों के निवासियों की इच्छाओं पर ध्यान देना संभव नहीं है। कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने छोटी सेनाएं बनाकर अफ्रीकी इलाकों पर कब्जा किया। सर जॉर्ज डैशवुड टॉबमैन गोल्डी ऐसे ही व्यापारियों में से एक थे। उन्होंने कहा था, बचपन में मैं मेज पर विश्व का नक्शा फैलाता था और उसके सभी महाद्वीपों को लाल पेंसिल से रंग देता था ताकि सब कुछ इंग्लैंड का बन जाए। अब मैं इस महान सपने को साकार करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जॉर्ज गोल्डी की नज़र नाइजर नदी के तट पर थी। उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की और नाइजर नदी के आसपास उसकी 100 शाखाएँ खोल दीं। इन मिशनों के प्रमुखों ने अफ्रीकी कबीलों के नेताओं के साथ 237 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन अनुबंधों के आधार पर सारी भूमि सर जॉर्ज की कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। गोल्डी के पास 20 गन बोट थीं। ये फ्रिगेट नाइजर नदी पर चलते थे और जब भी किसी कबीले का मुखिया उनके साथ संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता था तो वे उसके कबीले के घरों पर बमबारी करते थे। केन्या में अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी कि समस्त कृषि भूमि इंग्लैंड की रानी की जायदाद है। केन्या के ब्रिटिश शासक किसी भी परिस्थिति में इन ज़मीनों को मनचाहे तरीके से पट्टे पर दे सकते थे। कुछ समय बाद एक कानून पारित किया गया जिसके तहत गोरों को 3.5 वर्ग किलोमीटर से छोटी ज़मीन का मालिक बनने की भी अनुमति दे दी गई। वे इन 99 वर्षों तक इन ज़मीनों के मालिक रह सकते थे। उसके तुरंत बाद ये अवधि बढ़ाकर 999 वर्ष कर दी गई। इस तरह अंग्रेज़ों ने केन्या में बेहतरीन ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया। इन ज़मीनों से वहाँ के मूल निवासियों को बाहर निकाल दिया गया और मध्य केन्या में श्वेत हाईलैंड्स का निर्माण किया गया। अफ्रीकियों को सूखी बंजर ज़मीनों में उजाड़ दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। फ्रांसीसियों ने सेनेगाल, गिनी, घाना, मोरिटानिया और गैबन को निशाना बनाया। वे भूमि के मुकाबले में समर्थन की चाल से अपना काम चला रहे थे। अगर किसी को उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता था तो उसे फ्रांसीसियों से लड़ना पड़ता था। अफ्रीकियों की बारूदी बंदूकें और भाले, मैक्सिम मशीन गनों और फ्रांसीसी तोपखानों के सामने कुछ भी नहीं थे। उसके बाद फ्रांस ने नाइजर और चाड पर भी कब्जा कर लिया। इन विशाल क्षेत्रों पर कब्जे के परिणाम स्वरूप वहाँ कई भयानक नरसंहार हुए। जर्मनों ने भी बल और हत्याओं के बूते पर अपने कई लक्ष्य हासिल किए। उन्होंने मध्य अंगोला से लेकर ऑरेंज नदी तक की भूमि पर कब्जा कर लिया। जिस कबीले ने उनका विरोध किया उसका कत्लेआम कर दिया। हररुई जनजाति के सदस्यों ने, जिनकी जनसंख्या 80,000 थी, जर्मनों का विरोध करने का निर्णय लिया। इसके बाद हुए युद्ध में हररुई जनजाति के 80% से अधिक या 65,000 लोग मारे गए। जर्मनों ने नामा जनजाति का भी नरसंहार किया जिसमें जनजाति के आधे से अधिक लोग मारे गए। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड ने कांगो को अपनी निजी संपत्ति घोषित कर दिया। उन्होंने कांगो में दास्ता से लड़ने, वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार करने और लोगों को नई सभ्यता से परिचित कराने के लिए अफ्रीकन अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी नामक एक संगठन की स्थापना की। इसी तरह की चालों और बहानों के तहत उन्होंने 10,00,000 कालों का नरसंहार किया। कई यूरोपीय लोग अफ्रीका के विभाजन को विश्व के विभाजन का अंत मानते थे, लेकिन सेसिल रोड्स के विचार कि जो 17 वर्ष की आयु में अफ्रीका गए थे काव्यात्मक थे। 24 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका कंपनी की स्थापना की, जिसने उन क्षेत्रों पर कब्जा किया जो अब जाम्बिया और जिम्बाब्वे है। वो अपने दोस्तों को कविता के अंदाज में बताया करते थे, दुनिया कमोबेश विभाजित हो चुकी है, अब इन सितारों और ग्रहों के बारे में सोचो, उनकी रोशनी रात के अंधेरे को चीरती है, दुनिया विशाल है जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते। मैं हमेशा सोचता हूं कि उन्हें इतना स्पष्ट रूप से लेकिन इतनी दूर देखना दुख पहुंचाता है, अगर मेरा बस चलता तो मैं इन ग्रहों का भी मालिक होता। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आपने सुना वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप और भी दिलचस्प विषयों पर पॉडकास्ट सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, iranradio.ir/hi।